कबीर में यह मस्ती जिस मात्रा में विद्यमान है, किसी भी दूसरे भक्त कवि में उसके दर्शन उस मात्रा में नहीं मिलते, क्योंकि पारस्परिक मूल्यों के प्रति अस्वीकृति का भाव उसमें बहुत कम है। ऊंच नीच और जाति धर्म को भक्ति के क्षेत्र में एकदम बहिष्कृत मानने वाले होकर भी भक्त इन्हें व्यावहारिक जीवन में स्वीकार करते हैं, और भक्ति के लिए वेद की अपेक्षा स्वभाव को मान्यता देकर भी मर्यादा को अस्वीकार नहीं कर पाते। पृष्ठ संख्या 16। कबीर ऐसे नहीं थे। आत्मानुभव से जो उन्हें खरा दिखा उन्होंने उसको आगे बढ़कर अपनाया, लेकिन जो खोटा लगा उसे केवल छोड़ा ही नहीं, तोड़ने की सक्रियता भी दिखलाई। पारस्परिक मिथ्या मूल्यों को ढोने वाले व्यक्ति को उन्होंने गधा कहा है, ऐसा गधा जिसके हिस्से में चंदन का भार नहीं आता है। अजीब साम्य है। मध्यकालीन परिवेश में जीने वाले कबीर और अतिमानव की कल्पना करने वाले निश्चय ही की ऐसी ही एक मान्यता में, कबीर की ही भंगी में निश्चय ने पारस्परिक मिथ्या मूल्यों को ढोने वाले व्यक्ति को ऊंट कहा है, ऐसा ऊंट जो भार से लदा होने पर भी घुटने झुकाकर बैठ जाता है कि और लादा जाए ताकि वह पुनः शून्य रेगिस्तान की यात्रा करे। परंपरा के आगे सिर झुकाने का साफ अर्थ है अपनी स्वतंत्रता को दमित करना। कबीर के साहित्य और निश्चय के शब्दों में स्वतंत्रता उत्तरदायित्व का ही दूसरा नाम है। इस आत्म उत्तरदायित्व के बिना न क्रांति होती है न मस्ती आती है। आत्म उत्तरदायित्व का अर्थ है अपने को समस्त विश्व ब्रह्मांड के केंद्र में मानकर अपने ही अनुभवों के आधार पर हर परिणाम को स्वीकारने के लिए तत्परता पूर्वक नए निर्णय लिए जाए, और इस क्रम में खुद को इतना बुलंद किया जाए कि ईश्वर में और स्वर में कोई भेद न रह जाए। लेकिन शर्त है कि इस सारी साधना में पांव जमीन से उखड़ने न पाए। 20वीं शताब्दी के महान अस्तित्ववादी फ्रांसीसी चिंतक सार्त्र के मत से, पृष्ठ संख्या 17। मनुष्य वैसा ही हो सकता है जैसा वह अपने को बनाता है, अतः अपने निर्मिति के लिए वह वही सब प्रकार से उत्तरदायी है। आत्मा की आवाज यही आकर बहुमत की आवाज से बड़ी हो जाती है, क्योंकि आत्मा ही सत्य का साक्षात्कार कर सकती है। किंकेगार्ड का नैतिक मनुष्य इसलिए विश्व इतिहास की विकास गति या अतीत के चिट्ठे को अस्वीकार करके अपनी आत्मा का ही संधान करने में निरंतर रहता है, और इसी आत्मा के विवेक से वह मनुष्य के सत्य को उपलब्ध करता है। पैराग्राफ चेंज। कबीर ने भव सागर से मोक्ष के लिए आत्मानुभव को सबसे अधिक महत्व दिया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में वे परंपरा को अर्थात दूसरों के अनुभव को तब तक स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है जब तक वे आत्मानुभव की तुलना पर खरे न उतर जाएं। वेद को स्थूल घोषित करके इस आत्मानुभव को ही उन्होंने सूक्ष्म वेद कहा था, जो उनकी निगाह में एक साथ तीन तीन अर्थों का वहन करता है। वह सूक्ष्म वेद है, वह स्व संवेद है, और इसीलिए वह ऐसा ज्ञान ब्रैकेट में वेद है जो सुख का आधार है, ब्रैकेट में सुखीम वेद। कबीर की दृष्टि में किसी भी सत्य की प्रामाणिकता तब सिद्ध होती है जब वह केवल इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार द्वारा ही न देखा गया हो, बल्कि उस निष्काम निष्प्रिय और समस्त प्राणी जगत के प्रति निर्वेर भाव वाली आत्मा द्वारा देखा गया हो। यही कबीर का स्व संवेद्य ज्ञान है। इस ज्ञान की उपलब्धि के लिए बाह्य इंद्रियों वाले स्थूल शरीर और मन, बुद्धि चित्त तथा अहंकार वाले अंतःकरण दोनों का निग्रह आवश्यक होता है। जब तक मनुष्य का बाहर और भीतर शरीर और मन शुद्ध निर्मल तथा पवित्र नहीं होते, तब तक व्यक्ति गलत बात को सत्य समझ सकता है। पैराग्राफ चेंज। कबीर ने निर्मल विवेक की प्राप्ति के लिए जिन बातों पर निरंतर जोर दिया है वे हैं इंद्रिय निग्रह और मनोग निग्रह। जगत के सारे प्रपंचों की जड़ वे विषय तृष्णा को मानते हैं या विषय सुख की इच्छा ही। पृष्ठ संख्या 18। परम सत्य के साक्षात्कार के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है समस्त इंद्रियों एवं मन के विषय सुख का बोध कराने के लिए भारतीय साहित्य में एक शब्द प्रयुक्त होता है, काम। जगत के जिस पीड़क यथार्थ को कबीर ने बार बार अनुभव किया था वह यह काम ही था। कामजन्य दारुण पीड़ा को असह्य बताते हुए कबीर ने कहा है कि इस काम ने किस किस को नहीं ठगा है। सनक, स्वनंदन, शिव, सुखदेव, ब्रह्मा, विद्वान, योगी, जटाधारी अभी अवसर आने पर उसके सामने परास्त हो गए हैं। वैसे तो सभी इंद्रियों के विषय का ग्रहण काम के अंतर्गत होता है, लेकिन अपने विशिष्ट अर्थ में यह काम स्त्री पुरुष विषयक आसक्ति का वाचक है। अतः कबीर मानते हैं कि यह काम विजय ही सहजता देने वाली है। इंद्री के स्वाद के पीछे ही कामियों ने भक्ति को भी बिगाड़ दिया है। इंद्री सुख की दुर्निवार इच्छा व्यक्ति को अर्थ लोलुप बनाती है। दुनिया समझती है कि धन का अधिकाधिक संग्रह ही चतुराई है। कबीर ऐसी चतुराई पर आग डालते हैं। उनके मत से यह धन ऐसा मद है जिसे पिलाकर माया रूपिणी तृष्णा व्यक्ति को उसी तरह मत रखती है जैसे कला ऋण लोगों को मत पिलाकर मत रखती है। कबीर के समस्त साहित्य में काम, क्रोध, अहंकार, आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, मान, मद को बड़ी तत्परता से अस्वीकार किया गया है, और इन सबको अस्वीकार करके सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले संत को बहुमान दिया गया है। पैराग्राफ चेंज। कबीर इंद्रिय सुख की कामना का सारा दोष मन पर मढ़ते हैं। यह पापी और गंदा मन ही है जो आदमी को न घर में शांति लेने देता है न वन में। विषयों की अस्वीकार करके वन में चले जाने पर भी यह चैन नहीं लेने देता। इसी मन में मदन चोर निवास करता है जो ज्ञान रत्न को हर लेता है। पृष्ठ संख्या 19। यह मदमत मन ही भक्ति द्वार में प्रवेश नहीं होने देता। यह ऐसा बिना सर का चोर है जो सर्वस्व चुरा लेता है, और विचित्र बात यह है कि इसे कोई पहचान भी नहीं पाता। यह मन सब समझता है लेकिन समझ बूझ भी अवगुणों में निमत रहता है। विषयों के स्वाद के लिए एक पल में यह मन करोड़ों कर्म कर डालता है। सद्गुरु के शब्दों के प्रति आसक्ति नहीं होने देता और इस प्रकार दुर्लभ और अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ नष्ट कर देता है। पैराग्राफ चेंज। परम सत्य के साक्षात्कार के लिए कबीर इस मन के निग्रह को अनिवार्य मानते हैं। इंद्रिय निग्रह भी वस्तुतः इसी मन के निग्रह का साधन है। इस मन रूपी मृग को मारने के लिए ही कबीर शरीर को धनुष की तरह कसकर तैयार करने और पंच तत्वों को प्राण बनाकर उनसे मन को मारने की बात करते हैं, क्योंकि अगर यह मन नहीं मारा गया तो सब व्यर्थ है। कबीर की सलाह है कि इस मदमत्त मन को शरीर में घेर कर मारो। जब भी यह आत्मा के आदेश को अस्वीकार करे, इसे विवेक के अंकुश से बार बार विद्ध करो। इस मदमत्त को पीस कर ही सुख पाया जा सकता है। काया रूपी कदलीपन में एक मन रूपी मदमत्त गज निवास करता है। इसके निग्रह का एकमात्र अंकुश ज्ञान है, और कोई विरला संत ही इस ज्ञान अंकुश से मन को मार पाता है। पृष्ठ संख्या 20। अगर मन के हाथों हार गए तो हार गए, और यदि इसे जीत लिया तो जीत गए। वह परम सत्य स्वरूपी हरि इसी वशीकृत मन की प्रतीति से पाया जाता है। अगर इस मन को यत्न पूर्वक रखा जाए तो यही मन इंद्रिय निग्रही गोरख और सच्चिदानंद स्वरूपी गोविंद हो जाता है। निग्रह की इसी अवस्था को प्राप्त करके मन आत्मा का समसील हो जाता है, और इस प्रकार परम सत्य के साक्षात्कार में बाधक न बनकर साधक बन जाता है। और जैसा कि स्वाभाविक है, जो समस्त इंद्रिय निग्रह और मनोमारण को इसलिए आवश्यक मानता हो कि उससे परंपरित मूल्य मूढ़ता को छिन्न करके वर्तमान के लिए विधि मार्ग का संधान पा सके, वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में धरती से अपने पांव को उखड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी सारी साधना इस धरती के लिए ही उद्दिष्ट होती है। कबीर के साथ ऐसा ही था। एवेलिन अंडरहिल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस स्वभाव को बड़ी सफाई से रेखांकित किया है। उनके मत से यद्यपि कबीर एक ऐसे विराट और आनंदमय लोक की बात करते हैं जहां 12 महीने बसंत रहता है, 24 घंटे अमृत की झड़ी लगी रहती है, फिर भी वे उस आत्मविस्मृतकारी परम उल्लास में साक्षात्कार के समय भी दैन्य दिन्य व्यवहार की दुनिया को छोड़ नहीं जाते और न साधारण मानव जीवन को भुलाते ही है। उनके पैर मजबूती के साथ धरती पर जमे रहते हैं। उनके महिमा समन्वित और आवेगमय विचार बराबर धीर और सजीव बुद्धि तथा सहज भाव द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। उनके सर्वाधिक लक्ष्य होने लायक विशेषताएं हैं। पहला, सादगी और सहज भाव पर निरंतर जोर देते रहना। दूसरा, बाह्य धर्माचरों की निर्गम आलोचना और सब प्रकार के विराग भाव और हेतु प्रकृतिगत अनुसंधिता के द्वारा सहज ही गलत दिखाने वाली बातों को दुर्बोध और महान बना देने की चेष्टा के प्रति वैर भाव। पृष्ठ संख्या 21। यही कारण है कि कबीर साधारण मनुष्यों के लिए दुर्बोध्य नहीं हो जाते और अपने असाधारण भाव को ग्राह्य बनाने में सदा सफल दिखाई देते हैं। कबीर दास के इसी गुण ने सैकड़ों वर्ष उन्हें साधारण जनता का नेता और साथी बना दिया है। वे केवल श्रद्धा और भक्ति के पात्र ही नहीं, प्रेम और विश्वास के आस्पद भी बन गए हैं। सच पूछा जाए तो जनता कबीर पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है, इसलिए उनके संत रूप के साथ ही उनका कवि रूप बराबर चलता रहा है। नीतजे ने अपनी भावी अतिमानव को धरती पर पांव जमाए रखने के लिए जो चेतावनी 20वीं शताब्दी में दी है, कबीर ने उस चेतावनी को 400-500 साल पहले 15वीं शताब्दी में ही आचरित करके दिखा दिया था। पैराग्राफ चेंज। जहां तक अपना विकास स्वतंत्र रूप से करने का सवाल है, या अपनी खुदी को इस सीमा तक बुलंद करने की बात है कि मनुष्य खुदा की समकक्षता में पहुंच जाए, परंपरित मृत मूल्यों को अस्वीकार करके स्वतंत्र रूप से अपना विकास करने वाला और अपने तन मन की शुद्धता के प्रति अखंड आत्मविश्वास तथा अदम्य इच्छा शक्ति के सहारे अपनी सत्ता को ईश्वर की सत्ता के समकक्ष उठा सकने वाला ऐसा दूसरा व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलेगा। जहां तक मध्यकालीन भारतीय धर्म साधना और साहित्य का सवाल है, आधुनिक अतिमानव की धारणा को साकार करने वाला ऐसा दूसरा व्यक्ति कोई नहीं हुआ। परम सत्य के साक्षात्कार के लिए पीछे हम जिस इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की बात कर आए हैं, कबीर उस दृष्टि से बेदाग और निराले हैं। अपनी पवित्रता, अपनी साधना और अपने ज्ञान पर इतना अखंड विश्वास अन्यत्र दुर्लभ है। उनके चरित्र और स्वभाव की मस्ती तथा लापरवाही इसी अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। अपने ऊपर, अपने अनुभव, अपनी भक्ति और अपनी पवित्रता के ऊपर उनमें इतना अधिक विश्वास है कि सूर, नर, मुनि सबको उंगली दिखाकर अपनी तुलना में छोटे करते हुए उन्हें संकोच नहीं होता। पृष्ठ संख्या 22। साई ने 10 महीने लगाकर इंगला पिंगला और सुपर्ण तार से जिस झीनी झीनी चादर ब्रैकेट में शरीर को बुना था, उसे सूर नर मुनि सबने ओढ़ा और ओढ़कर गंदी कर दिया। अकेले कबीर ऐसे थे जिन्होंने ओढ़कर भी चादर को ज्यों का त्यों रख दिया था। पैराग्राफ चेंज। अपने पर और अपने अधिगम्य पर यह अखंड विश्वास ही कबीर को उस शक्ति से संपन्न करता है जिसे आधुनिक चिंतन व्यक्तित्व की स्वतंत्रता या आत्म उत्तरदायित्व कहते हैं। इसी अखंड आत्मविश्वास के सहारे वे अपनी सत्ता को उस सीमा तक ऊपर उठा सके हैं जहां सुर नर मुनि कोई नहीं पहुंच सका। प्रेम के घर को उन्होंने खाला का घर नहीं माना। वे जिस प्रेम, परमानंद और परम सत्व के दीवाने थे, वह न खेत में उपजता है न बाजार में बिकता है, लेकिन दुर्लभ भी वह नहीं है। उसका मूल्य दो और भरपूर लो। यह मूल्य है सिर। राजा हो या प्रजा, सिर देकर इसे पा सकता है। बिना दाम चुकाए यह दुर्लभ प्रेम रस पिया ही नहीं जा सकता। जिसमें साहस नहीं है, अपने प्रेम पर अखंड विश्वास नहीं है, उस कायर को यह नहीं मिलता। जो अपने हाथ से अपना सिर उतार कर धरती पर रखते, उस सूर को ही राम की दुर्लभ भक्ति मिलती है, या फिर उस सती को मिलती है जो सबकी बड़ी आशा छोड़कर एकनिष्ठ मन से उस परम पुरुष का भजन करती है। एक निष्ठता, सर्वस्व समर्पण, तन मन की शुद्धि और अखंड आत्मविश्वास के बिना परम सत्य स्वरूपी प्रिय के साक्षात्कार, सानिध्य और सुहाग दुर्लभ भी नहीं, असंभव भी है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक मनुष्य के लिए भी सत्य के प्रति एक निष्ठता और अपने प्रति अखंड आत्मविश्वास के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, क्योंकि अपनी अनुभूत पहली वह किससे पूछे। पृष्ठ संख्या 23। कबीर ने आखिर किससे नहीं पूछा। अवधू चुप, पांडे चुप, काजी मुल्ला, वेद पुराण सभी चुप। ऐसी स्थिति में अपने अतिरिक्त कोई बचता ही नहीं। कबीर का अनुभव शास्त्र के अनुभव का समसील था। कबीर का सारा साहित्य वही कहता है जो लेनुवेल लिटरेरे द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय छात्रों की मनोवृत्ति की परीक्षा के सवालों का जवाब देते समय सात्र ने लिखा था। यह मनुष्य बुद्धि का विरोध भास है कि वह जो दूसरों के लिए आवश्यक अवसर और परिस्थितियां पैदा करना चाहता है, खुद अस्तित्व के एक मामूली स्तर से ऊंचा नहीं उठ पाता। वह उन भविष्यवक्ताओं की तरह है जो दूसरों का भविष्य तो बता सकते हैं किंतु अपना नहीं जानते। कबीर का यह अनुभव अवधू, पांडे, काजी, मुल्ला और सुर नर मुनि सभी के विषय में एकदम ऐसा ही है। पैराग्राफ चेंज। ऐसी स्थिति में एक ही सहारा बचता है, आत्म अनुभव। कबीर ने आजीवन इसी को प्रमाणित माना है और इस अनुभव को अनुभव निर्भय भवातीत अतः परम सत्य स्वरूपी ब्रह्म सभी का पर्याय मानकर अपनी वाणियों में बहुत प्रयुक्त किया है। कबीर का स्पष्ट अभिमत है कि यह अनुभव ही व्यक्ति को निर्भय बनाता है। सत्य की खोज में संसार के एक एक कण को वस्तुगत यथार्थ के छोटे से छोटे उपकरण को महत्वपूर्ण मानकर खुली आंखों से संसार का पीछा करने और इस प्रकार अपनी धरती और अपने वर्तमान के प्रति संसक्त रहने की प्रेरणा देता है। साधक को भाव सागर से पार उतारता है। ब्रैकेट में अन धन भाव। इतना ही नहीं, यह अनुभव उस परम सत्य का भी बोध कराता है जो भाव से अतीत है, भय से परे है, साक्षात ज्ञान ब्रैकेट में अनुभव स्वरूपी है। आज के आधुनिक मनुष्य की तरह कबीर अनुभव को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं और इसके मार्ग में बाधा स्वरूप खड़े होने वाले किसी भी तत्व को, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना किसी हिचक के अस्वीकार कर देते हैं। पृष्ठ संख्या 24। मध्यकालीन धर्म साधकों में कबीर अकेले हैं जो न किसी संप्रदाय में स्वयं दीक्षित हुए, न किसी को अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। दीक्षित करना तो दूर, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने अनुभवों का प्रचार करने वाला कोई पंथ या संप्रदाय ही नहीं बनने दिया। हर चीज को स्थूल और ठोस बना देने के अभ्यासी इस बात को पसंद नहीं करते। गांधी जी ने कोई संस्था नहीं दी, कोई कार्यक्रम नहीं दिया। इसकी शिकायत गांधी जी शताब्दी वर्ष के दौरान बड़े बड़े लोगों ने की। गांधी जी की यह शिकायत ठीक उसी रूप में कबीर पर भी लागू होती है, लेकिन कबीर और गांधी को इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर किसकी किसकी फरमाइश पूरी की जाए, और यह जन जन का मन रखना जायज भी कहा है। जन जन को मन राखता, वेश्या रह गई बाँझ।